रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही
ओम शांति। एक यहूदी फकीर से किसी ने पूछा था, अध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो उसने कहा था, अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। अध्यात्म अर्थात रुकना है ही नहीं। जो अब तक पाया, जो अब तक प्राप्तियां की, जो अब तक मिला, जो जो अब तक अनुभूतियां की, रुकना नहीं, और आगे और आगे और आगे। यदि कोई ये सोच ले कि हमने बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ पा लिया तो प्रगति रुक जाएगी। अध्यात्म अर्थात एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, और आगे और आगे। जो अनुभव अब तक हुए और बहुत सारे दिव्य अनुभव अभी है जो बाकी है, ये तो केवल रास्ते के मील के पत्थर है, मंजिल ये नहीं। जो योग में अनुभूतियां हुई है, सोचो ये कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत आगे बाकी है। जो योग की अभी स्थिति है, जो ज्ञान की अभी स्थिति है और जो ज्ञान का अभी चिंतन है, ये कुछ भी नहीं है, अभी और बहुत बाकी है। जो सेवाएं अब तक की है ना के बराबर है, अभी तो बहुत बाकी है, और आगे अर्थात अध्यात्म। ये परिभाषा है स्पिरिचुअलिटी की। तो इस ब्राह्मण जीवन में, इस ब्रह्मा कुमारी कुमार जीवन में कहीं पर भी रुकना नहीं है। कांटों पर चल के मिलेंगे साए बाहर के, परंतु इसी मार्ग में एक ब्रह्मा कुमारी जीवन में कुछ ऐसे पेपर आएंगे, ऐसे कड़े पेपर जो कभी सोचा नहीं था, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी, जो कभी किसी ने बताए नहीं थे, कूद पड़े थे और बाद में पता चले। तो ऐसे 10 पेपर है, 10 अग्नि परीक्षा है, जिसको जिसमें से एक एक ब्रह्मा कुमारी बहन को गुजरना पड़ता है, और एक एक पेपर बहुत कड़ा है, बहुत ज्यादा कड़ा। कई हार जाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऊपर से है सब कुछ, पर अंदर से थक गए, हार गए, छूट गया। कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, गोलियां चालू है, ऐसी उदासी छाई है कि रात रात भर नींद नहीं आती। हम एक दिन में कम से कम 20 से 25 ब्रह्मा कुमारी बहनों को अपनी ओपीडी में देखते हैं। भारत और सारे विश्व की। तो जो बातें हम आपको बताएंगे उस अनुभव के आधार से, कुछ बातें बहुत ज्यादा कड़वी होगी, पर वो भी सत्य है। इसके लिए ये क्लास केवल इसी दीवारों के अंदर रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगी। सबसे पहला पेपर लौकिक से पेपर, उसमें दो प्रकार, एक तो वो ज्ञान में है, एक तो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में है तो ठीक, ज्ञान में नहीं है चाहे कोई भी हो, पर उधर हलचल तो इधर हलचल, उधर किसी को बीमारी तो यहां हलचल, उधर किसी की मृत्यु तो यहां हलचल। वो संसार छोड़ दिया, परंतु वो लगाव, वो मोह, वो आसक्ति अब भी है। ऊपर से हम कह रहे तोड़ निभा रहे, पर तोड़ निभाने के नाम पर अपने मोह का पोषण कर रहे हैं। संन्यास में 3 नियम है, कट द ब्रिज, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट। पहला, आर्मी में बीच में खाई है, इस ओर से उस ओर जाना है, पुल रखते हैं बीच में, पुल बांधते हैं और पुल से चढ़कर इस ओर जाते हैं। एक बार वहां चले गए कि पुल को काट देते, ताकि मोह ना हो, भागने की कायरता ना हो, कि वापस उसी मार्ग से भाग जाए। जो होगा वो होगा युद्ध की भूमि में। समर्पण का पहला नियम है कट द ब्रिज, उस पुल से बांधकर इस ओर आए हो, उस दुनिया से इस ओर आए हो, कट द ब्रिज, अब उधर से कोई लेना देना नहीं। एक सेवा केंद्र में बड़ी बहन हमसे कह रही थी, हमारी छोटी बहनों को समझाओ, वो धमकी देती है बार बार। हम तो चली, हमसे कुछ कहना मत, नहीं तो हम चली जाएंगे अपने घर। वो दुनिया छोड़ दी, परंतु अभी भी मां के हाथ की दाल और रोटी, आहा, उसकी याद बहुत है, भूला नहीं है। कट द ब्रिज, ड्राउन द बोट, जिस नाव में बैठकर उस दुनिया से इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया में आने के बाद नाव को डुबो दो। ताकि वापस उस दुनिया में जाने का कोई चांस कोई अवसर ना रहे. थ्रो द लैडर, जिस सीढ़ी पर बैठकर ऊपर गए हो, ऊपर पहुंचने के बाद सीढ़ी को फेंक दो, ताकि फिर मोह ना हो, फिर आसक्ति ना हो, फिर से उसी दुनिया में जाऊं, यहां डिस्टर्बेंस हो रहा है, यहां इनसिक्योरिटी है, यहां क्या होगा मेरा. अलौकिक मात पिता मिले हैं, उनके सामने लौकिक मात पिता आधार नहीं है. उधर किसी को हलचल, बहन आई एक, मेरा भाई बहुत दारू पीता है, मैं परेशान हूं. वो दुनिया को छोड़ दिया, भाई से आसक्ति अब तक गई नहीं. संसार में हजारों लोग दारू पीते तब तो दुख नहीं होता है, उसके लिए क्यों होता है. माताएं कहती हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो, बाप कहते कभी भारत की बुद्धि का ताला खोलो. कहा एक बहन आई थी, रो रही थी, बहुत दुखी थी, डिप्रेशन, चार गोलियां चालू. क्या किया, घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, सेंटर का सारा पैसा घर में भेजती रही चुपचाप. पाप किया ऐसा लग रहा है, आत्मग्लानी हो रही है, अपराध भाव भरा है, पर बता नहीं सकती किसी को. बताऊंगी तो क्या कहेंगे, बड़े छोटे किसी को पता चल जाए तो. लौकिक की सेवा करना, लौकिक का ध्यान रखना ठीक है, परंतु आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट, उनकी यादें, दस दस बार फोन हफ्ते में, लंबी लंबी बातें, इसका मतलब उस दुनिया को छोड़ा नहीं है अभी तक. अभी तक उसकी याद बनी है, अभी तक सहारा बना के रखा है, इधर कुछ हुआ तो वापस चले जाएंगे. वापसी का ख्याल अब भी है. चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है, है तो और ही ज्यादा आ सकती है कईयों की तो उनमें. मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां, मम्मी, मम्मी, मम्मी. सारा ध्यान मम्मी की तरफ ही है, पुरुषार्थ रह गया बाजू में, स्टूडेंट्स रह गए बाजू में, तपस्वी जीवन और तपस्या रह गई बाजू में, सारा ख्याल मम्मी का है. ये पेपर सबको आएगा. इस संसार में कोई भी इटर्नल नहीं है, अविनाशी, सबको मरना है, वो भी मरेंगे. इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसको कोई बीमारी नहीं, उनको भी बीमारी होगी, असाध्य बीमारी होगी. तो क्या उनकी बीमारी में हलचल में आ जाएंगे? इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर आर्थिक समस्याएं नहीं है, उनके पास भी होगी. पर जिस घर को छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उस संसार से अब कोला कोई लेना देना. कट द ब्रिज, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर. उस ओर से इस ओर आ गए, अब यहां जो होगा यहां होगा. यहां से जाएंगे तो लाश जाएगी, कफन धारण किया है. डर किसका? आधा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए, समग्र समर्पण चाहिए, कंप्लीट इंटीग्रेटेड सरेंडर. फेरी पहन कर जाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, फना होने वाले, स्वाहा होने वाले. दादी जब आई थी तो ऐसा सोचा था कि क्या होगा, हमारी बुढ़ापे में कौन देखभाल करेगा? उन्हें तो कुछ खबर नहीं थी, बस कूद गए, जो होगा सो होगा। क्या हमारा समर्पण ऐसा है? समर्पण अर्थात चार चीजें नहीं। समर्पण का संबंध किसी ड्रेस से नहीं है, समर्पण का संबंध किसी बैच से नहीं है, समर्पण का संबंध किसी स्थान से नहीं है, और समर्पण का संबंध किसी समारोह से नहीं है। समर्पण स्थिति का नाम है, किसी सेलिब्रेशन का नहीं। एक बहन ने फोन किया, भाई जी हमारे लिए योग करो, मेरे पास ना वो बैच है, मुझे वो दूसरा वाला बड़ा वाला बैच चाहिए, वो मिल जाए उसके लिए आप क्या मेरे लिए योग कर सकते हो? संगम युग की क्या प्राप्ति और किस में लगे हुए है? कौन सी ऊंचाई या स्थिति की और कहां फंसे हुए है? समर्पण स्थिति का नाम है, मनोदशा का नाम है। समर्पण का कोई समारोह नहीं है, वो तो सिक सिक झुक झुक मरना है, प्रतिपल, हर समय, हर दिन, हर रात। ये पेपर आएगा सबको, इसमें अड़ोल रहना है, अचल रहना है। आज जो है वो कल नहीं रहेंगे। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा मम्मा चली गई, हम क्या करें? बाप कहते हैं, तुम भी जाओगे। कुछ दिन पहले मुरली थी, एक दो मास पहले मरने के ऊपर, तुम्हारा भी नंबर आएगा। दूसरा पेपर शरीर का पेपर, ये जो शरीर इतना स्वस्थ है, इतना अच्छा है और इतना सुंदर दिखाई दे रहा है बाहर से, कुरूप होगा, बीमारी आएगी, ऐसी ऐसी बीमारी जो सोची नहीं थी। अभी अभी हॉस्पिटल में दो बहनें हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर, ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी चालू है, दोनों अकेली है ज्ञान सरोवर में, कोई सेवाधारी साथ नहीं, अकेली आती है, अकेली एडमिशन कराती है, फार्मेसी में जाती है, दवाइयां मंगाती है, दवाइयां आती है, वार्ड में जाती है, कीमोथेरेपी चलता है एक दिन, फिर 21 दिन के बाद आती है, दूसरे दिन वापस ब्लड टेस्ट के लिए आती है, वॉमिटिंग होती है, उल्टियां होती है, इतना हेवी डोज है कीमो का, अकेली। हम कहते हैं किसी को बुला लो, किसी कन्या को, किसी सेवादारी को, कहती कौन रहेगा इतना दिन। तीस भी उम्र नहीं है, दूसरी वैसी है, उसकी 5 कीमो हो गई, सारे बाल उड़ गए अब तो। एक बहन है फ्रेडरिच अटैक्सिया, एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें धीरे धीरे चलना कम हो जाता है, अभी तक चलती थी, धीरे धीरे बीमारी आगे बढ़ रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके भाई को भी है, अभी दीवार पकड़ पकड़ के चलती है, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। बड़ी बड़ी बीमारियां, ये शरीर आएगी, उसके लिए भी स्वयं को तैयार रखना है। उसमें 3 बातें हैं, पहले तो बीमारियों के लिए स्वयं को तैयार रखना, कैसी भी बीमारी आ जाए अचल अडोल रहेंगे। हमने दादियों को देखा है, कितनी सारी दादियों को, पालू दादी, मनोरिंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी, इधर प्रिक इधर प्रिक इधर प्रिक कुंज दादी, कुंज दादी को तो लाइन मिलना इतना मुश्किल था, इधर प्रिक छन्नी छन्नी करके दादी को कोई खबर ही नहीं, शरीर से इतना डिटैच्ड। इतना देह से न्यारापन। हमने उन बहनों को भी देखा है चिड़चिड़ी एकदम, कैंसर सारे शरीर में फैला हुआ है, बाबा तो भूल ही गया, कोई बाबा बीबा कुछ नहीं। एक बहन तो मसाला डोसा खाते खाते शरीर छोड़ा उसने, वही चाहिए, सारी बुद्धि मसाला डोसा में चली गई मरते समय, अंतकाल अंतमती सो गति। छोटी मोटी बहन नहीं, बड़ी 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 बहन। पर ये हम बात वो कर रहे हैं कि भगवान की याद ही नहीं है वहां, जीरो, इरिटेबल, चिड़चिड़ापन, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मुंबई में जब हम थे BSES हॉस्पिटल में, ऐसी अवस्था। एक समर्पित भाई 20 साल तक सेवा की, दिन रात भागते भागते, इतनी सेवा इतनी सेवा इतनी सेवा, पर योग करने के लिए कभी समय नहीं था, ज्ञान का चिंतन कभी नहीं किया। जब बीमार पड़ा, सेवाधारी था, सेवाधारी छुट्टी पर गया 2-3 दिन, बेचैन हो गया, उदासी आ गई, क्या कहने लगा, अगर अच्छा होता शादी की होती, आज पत्नी और बच्चे होते मेरा ध्यान रखने के लिए, यहां कोई भी नहीं है। इसी संकल्पों के साथ शरीर छोड़ा उसने। ये ना भूलो कि सेवा इज द 4th सब्जेक्ट। सेवाओं के जंगल में इतना ना खो जाओ कि तपस्या खो जाए। सेवा महत्वपूर्ण है, सेवा के लिए जीवन है, परंतु जो सेवा ज्ञान रहित और योग रहित है, उसमें टकराव है, संघर्ष है, मनमुटाव है, वैराग समाप्त हो जाता है। और शरीर की बीमारी में पहली बात तो तैयारी कि होगा तो अचल रोल रहेंगे, पहले से तैयार मन। दूसरा, ऐसा कोई खान पान या ऐसी बातें ना हो जो हम बीमार पड़ जाए। हम यदि बीमार पड़ते हैं तो जो खर्चा हम पर होता है वो यज्ञ से होता है। यज्ञ के रिसोर्सेस मुझ में कम से कम वेस्ट हो मेरे ऊपर। अव्यक्त महावाक्य बाबा की इन्वर्टेड कॉमा, जो बच्चे अपनी गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। दूसरा महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, अपने शरीर को नहीं चला सकते वो राज्य को क्या चलाएंगे। तीसरी बात, हेल्थ कॉन्शियसनेस या मेडिकल चेकअप। कितनी सारी बहनें ओपीडी में आती है, कहती है 5 साल से डिप्रेशन है। हम कहते हैं एक बार ब्लड चेकअप कराओ, ब्लड चेकअप किया तो पता चला थायराइड निकला, और वो सोच रही थी डिप्रेशन सेंटर में तनाव के वजह से, जबकि डिप्रेशन का कारण थायराइड था जो चेकिंग नहीं किया अभी तक। कोई विटामिन की कमी थी, कोई मैग्नीशियम की कमी थी, कोई पोटेशियम की कमी थी। हीमोग्लोबिन, कितनी ब्रह्मा कुमारी बहनों का हीमोग्लोबिन 5-6 ऐसे देखा हमने, उसी के साथ चल रही है। कहती है सेवा करती है, गीता पाठशाला पर जाती है, थकान हो जाती है, एक मुरली सुनाया, एक घंटा बोला कि बस सारी एनर्जी गॉन, और पता ही नहीं क्यों, शायद तनाव की वजह से। अरे तनाव नहीं, शरीर में खून ही नहीं है, चेकिंग ही नहीं किया कभी। कितनी बहनों को हमने देखा है थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में आती है ब्रेस्ट कैंसर के साथ, गांठ है पर छोड़ दिया उसको, तकलीफ कुछ नहीं है तो क्या करना है, और जब आई और जब उसको बायोप्सी किया, इट हैज ऑलरेडी स्प्रेड, लंग्स में मेटास्टेसिस हो गया है, फेफड़ों में चला गया है, हड्डियों में फैल गया है। एक दो साल पहले गुजरात की एक बहन ने शरीर छोड़ा था हॉस्पिटल में, पूरे शरीर में फैल चुका था वो, पेट में सब जगह, लेट डिटेक्शन। इसके लिए साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप, कंप्लीट बॉडी चेकअप होना चाहिए साल में एक बार। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है और हमको बहुत लेट पता चले। ऐसी ऐसी बीमारियां देखी है हमने बहनों में, जो सोच भी नहीं सकते थे। कितनी बहनें सेंटरों की शांतिवन में रुकी हुई है, ज्ञान सरोवर में रुकी हुई है, ट्रीटमेंट चालू है पर कुछ ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि बीमारी अब बहुत आगे की स्टेज पर है। पहले ध्यान नहीं दिया, सेवा 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 सेवा, दिन रात सेवा, बाबा की सेवा, बाबा की सेवा, बाबा की सेवा, और अब ना सेवा है ना कुछ है, डिप्रेशन है। तो शरीर का पेपर, मेडिकल चेकअप, ऐसा कोई काम ना करे जिससे बीमार हम पड़ जाए, ऐसा कोई खान पान ना हो कि दिन रात बस खाने की बात है। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात संपूर्ण जीवन किचन में व्यतीत करना तो नहीं है ना। और पहली बात बताई थी, यदि बीमारी आ भी जाए तो भी अडोल, ड्रामा, कल्याणकारी, इसमें भी कल्याण छिपा हुआ है, उसमें भी स्थिति को हिलने नहीं देना, उसमें भी हमें किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। कुछ कुछ बहनें आती है, थोड़ा सा कुछ हो गया, उनको भाइयों की सहानुभूति चाहिए, स्पष्ट दिखाई देता है चेहरे से। एक बहन चार भाई उसको लेके आते, क्या हुआ क्या हुआ, अटेंशन सीकिंग, ढोंग नाटक, बेहोश गिर जाती है, मुरली सुनते सुनते बेहोश, सेंटर पर डिस्टर्बेंस है, यहां बेहोश हो जाओ, स्ट्रेचर पर ले जाते हैं, एडमिट होती है, 10 लोग मिलने आते, अच्छा लगता है, बीमारी कोई नहीं, नाटक, हिस्टेरिया बहुत कॉमन है। एक बहन आई थी, पूरा रात भर जोर जोर से सांस, जोर जोर से सांस, जैसे कि दमा का अटैक है, एक्सरे नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, कहीं कुछ नहीं, दो तीन घंटे में ठीक। सोचने की बात है, ऐसा व्यक्ति करता क्यों है, क्योंकि अंदर से इतना अकेलापन है, उसको लगता है मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ये करो तो ध्यान आकर्षित करते हैं। बाहर गए तो बहुत होते हैं हॉस्पिटल में, हर एक एक दो कन्याएं तो आती है माउंट की, लोकल नाटक, दूर से पता चलता था ये हिस्टेरिया है, मेडिकल में इसको हिस्टेरिया कहते हैं, कन्वर्शन डिसऑर्डर। पर इसके कुछ असली कारण भी, सही कारण भी हो सकते हैं। एक बहन आई थी सेंटर की कहीं से, उसको फिट्स की बीमारी, पर वो फिट्स था नहीं, उसको ऐसे कुछ कुछ खेच और कुछ कुछ आता था, सब टेस्ट किया, MRI, EEG, कहीं कुछ नहीं, काउंसलिंग सेशन चालू किए, उसमें पता चला कुछ और बात। जब वो छोटी थी तो उसके कजन ब्रदर के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट, ऐसा वो ट्रॉमा था, सेक्सुअल ट्रॉमा बचपन का, जो अभी तक कुछ 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 उसको होते रहता है, याद आती रहती है, झटके लगते हैं, अचानक से झटके, अजीब से झटके जिसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है, तो ये भी है। तो दूसरा पेपर शरीर का, तीसरा पेपर स्टूडेंट के द्वारा पेपर आएगा, जिनकी हमने पालना की, जिनका हमने कोर्स कराया, जिनको हमने बाबा से मिलाने लेके गए, मधुबन लेके गए, जिनको दादियों से मिलाया, बाबा से मिलाया, जिनकी पालना की, वही हमारे विरोध में खड़े हो गए। जिन माताओं को किचन में एंट्री दी, वही जाकर हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं। वही सारे मिलकर षड्यंत्र करके बहन को ही निकाल दिया बाहर, यहां से बाहर दूसरे सेंटर पर। स्टूडेंट्स की पालना करनी है, प्यार करना है, सब कुछ करना है, पर डिस्टेंस, वो उधर हम इधर। इतना अपने सारे सीक्रेट्स, जीवन के रहस्य, जीवन की बातें किसी को नहीं बता दो कि वो ब्लैकमेल ही करने लगे, और किसी का कोई भरोसा नहीं है। वो गृहस्थी है, वासनाओं की चक्की में पिस के आए हैं, ये ना भूलना। चाहे कितना भी ज्ञान में चल रहे हैं और कितना भी आगे है तो गृहस्थी। घरों में बैठ के कमरे में बंद करके क्या देखते हैं टीवी मोबाइल इंटरनेट में, किसको पता है। कितना भी अच्छा कुमार अंदर क्या करता है किसको पता। इसके लिए अत्यधिक विश्वास भी नहीं करना है किसी के ऊपर। डोंट ओवर ट्रस्ट एनीवन। जो बहुत भोले भाले दिखते हैं अति चतुर सुजान हो जाते हैं, ओवर स्मार्ट। उनसे भी पेपर आएगा। प्यार करना, पालना करना, ध्यान देना, सब कुछ करना, परंतु डिटैच्ड। हम अलग, वो अलग, इधर की बातें उधर। लगाओ किसी भाई में। एक सेंटर की बहन थी, सत्य घटना, एक मुस्लिम भाई आता था, उससे प्यार हो गया। वो भाई उधर से उसको मैसेज करता था, वो इधर से मैसेज करती, तुम्हारे होंठ बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गाल बहुत सुंदर है, तुम बहुत सुंदर दिखती हो, ये मैसेजेस। इतना ज्यादा लगाव बढ़ गया, इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन उसकी पत्नी आई सेंटर पे झगड़ा करने कि तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही हो। समर्पित बहन से झगड़ा, हंगामा हुआ। इसके लिए गृहस्थियों से थोड़ा सा बच के रहना है। प्यार दो, पालना करो, सत्कार करो, सम्मान करो, बहुत अच्छे से बात करो, पर काम हुआ, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, डिटैच्ड। ज्यादा किसी से आकर्षित और ज्यादा किसी से लगाओ, और वो कार देता है तो उसकी कार में ही हम घूमते रहे, ये सब नहीं चाहिए। किसी एक सेवा केंद्र में एक भाई है, सहयोगी, उसने जमीन दी, वहां पे सेंटर बना, पर वो भाई ऐसे धमका के रखता है सबको, कुमारों से तो ऐसे बात करता है जैसे नौकर है, और उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि जमीन उसकी दी हुई है। ऐसों की जमीन भी नहीं चाहिए हमको। किसी के उपकार के नीचे दब के नहीं जीना है। नहीं झोपड़ा रहा तो चलेगा, नहीं चाहिए सेंटर बड़ा। किराए का रहा तो चलेगा। किसी भिखारी के पैसे, किसी भिखारी का उपकार नहीं चाहिए। किसी विकारी की खुशामद चाटुकारिता नहीं करनी है। स्टूडेंट से भी पेपर आएगा, इसके लिए सावधान। चौथा पेपर साथियों के द्वारा पेपर, जिस सेंटर पे रहते हैं वहां जो साथी है उनके द्वारा पेपर। भाव स्वभाव में टकराव, भाव स्वभाव में टक्कर, दो व्यक्ति साथ में रहते हैं परंतु बात नहीं करते, वह उधर से आता है तो वह उधर मुंह करता है, लून पानी। ये हम ना भूले कि हमें नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या नफरत, छोटी कन्या अभी अभी आई और हमसे आगे जा रही है, हर एक वही पा रहा है जो उसका भाग्य है। किसी को कम ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो रहा है। किसी को सब मिल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा है नहीं। हर एक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। इसके लिए साथियों के साथ प्रेम, सहयोग, सहयोग के नोट्स तुम्हारे जेब में होने चाहिए, बाबा की महावाक्य है। और उनमें भी जो बातें अभी बताई थोड़ी देर पहले, लगाओ, बहुत ज्यादा लगाओ, वो भी बाधा है। झगड़ा, वो भी बाधा है। डिटैच्ड रिलेशनशिप्स, लविंग एंड डिटैच्ड रिलेशनशिप्स साथियों के साथ। सहयोग करो, सब कुछ करो, पर अपेक्षा नहीं रखना कि हम बीमार पड़े तो ये मुझे पूछे कितना बुखार है, खाना खाया गया। पूछे तो बहुत अच्छा, मदद करे तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो भी ठीक। तो साथियों से पेपर, अगला छोटों से पेपर, कुमारियों से, कन्याओं से, जो हमारे साथ रहती है, जो एक उदाहरण बताया, कोई आए और हमसे आगे जा रही है। हो सकता है जो कन्या सेवा केंद्र पर आती है, क्या पता वो कौन है, किस जन्म की महातपस्वी आत्मा आई है आपके घर में, क्या क्या पुण्य और कैसी साधना करके आई है, उसमें जो वैराग है शायद तुम में नहीं, 10 साल से 20 साल से ऐसी आगे चली जाएगी। क्यों ईर्ष्या करें, सबसे सीखना है हमें। उनसे भी पेपर आएंगे, डिसोबीडियंट हो जाएगी, कहना नहीं मानेगी, या उसे लगाव हो जाएगा, दोनों बातें, या झगड़ा हो जाएगा। छोटों से भी पेपर आएंगे। लक्ष्य ये रखना है, मैं मां हूं। मैं कौन हूं? मां, अन्नपूर्णा हूं, मुझे उसकी पालना करनी है। वो छोटी है, मुझे उसकी पालना करनी है। हम बड़े हैं, हम पूर्वज हैं, एंसेस्टर, फोर फादर्स। परेशान नहीं होना है उसकी वजह से, छोटों की वजह से। अगला पेपर है बड़ों से पेपर। इस संपूर्ण यज्ञ में ऐसा सिस्टम बना है कि हर एक के ऊपर कोई ना कोई है, हर एक के ऊपर कोई ना कोई है, और बड़ों से भी पेपर आएगा और हर एक को आएगा। और यह सबसे कड़ा पेपर है, सबसे कड़ा। छोटों को डांट सकते, बड़ों का क्या करेंगे? इस पर भी एक मुरली है, हमें डेट याद नहीं है, पर एक विस्तार से मुरली है केवल इस एक बात पर, छोटी बहनों से मुलाकात, जिसमें बाबा ने बहुत सारी बातें कही है, जिसमें सभी बहनों को कंप्लेंट है सीनियर की, बाबा ने कहा है क्या बाप में अकल कम है जो उसको निमित्त बनाया? तुम समझते हो ये ठीक नहीं है, पर उसको निमित्त किसने बनाया? भगवान ने बनाया। उसके मुख से जो निकला जा रहा है वो इनडायरेक्ट बाबा के ही मुख से निकल रहा है, और उसमें गुप्त कल्याण छिपा हुआ है। ऊपर से अकल्याण दिखाई देता है, पर उसी में कल्याण छिपा हुआ है। उसका विरोध, उसकी निंदा, उसकी ग्लानी करना। हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, बड़ी बहन जी बाहर गई थी कहीं, छोटी बहन बैठकर बहुत बड़ा क्लास था, मुरली चला रही थी। उस सेंटर पर दो बिल्लियां थी जो कि बड़ी बहन ने पाल के रखी थी और उनको बहुत प्रिय थी और जिनको वह दूध भी पिलाती थी। वो बाहर गए थे, हम क्लास में बैठे थे। छोटी बहन मुरली चला रही थी, मुरली में पॉइंट आई मोह की। तो उस छोटी बहन ने कहा, मोह देखो हमारी बड़ी बहन दो दो बिल्लियां पाल के रखी, इतना मोह किसके सामने कह रही है? उन स्टूडेंट के सामने जिनकी निमित्त वो है बड़ी बहन, जिसने अपना संपूर्ण जीवन त्याग तपस्या में गुजार कर इतने बड़े सेंटर का निर्माण किया, उसी की एब्सेंस में निंदा कर रही है। ये महापातक है। बड़ों की निंदा करना, झरमोई झगमोई करना, बातें बनाना, ग्रुप बनाना, ये समझना ये पक्षपात करते हैं। किसी के साथ कोई पक्षपात, उस हरेक को वही मिल रहा है जो मिलना चाहिए। हरेक, छोटे से लेके बड़े तक, हरेक के ऊपर कोई ना कोई है, कोई ना कोई है, कोई ना कोई है। कभी कभी उनके जूतों में अपना पैर डाल कर देखो, उस स्थिति में खुद खड़ा करके देखो, फिर समझ में आएगा उन्होंने कितनी त्याग, कितनी सेवा, कितनी तपस्या, कितनी साधना की है जीवन में, तब जाके ये सब हुआ। और हम अभी अभी आए, क्या देखा हमने यहां पर? कुछ नहीं। और हम निंदा कर रहे, ग्लानी कर रहे, उनके विरोध में बोल रहे, हंसी उड़ा रहे, उनके पीठ पीछे कुछ कह रहे हैं। और उनके भी द्वारा बहुत सारे पेपर भी आएंगे। सोचना ये सब जो हो रहा है किसी जन्म का हिसाब भी तो है। गुलजार दादी ने एक बार कहीं गए थे, बहुत सारी छोटी बहनें मिली और सब बहनों ने मिलकर अपनी बड़ी बहन की कंप्लेंट की दादी को। दादी ने उनसे कहा था, कहीं लिखा हुआ नहीं है, अपनी बड़ी बहन की मां समझकर पालना करो। दादी ने उन छोटी बहनों को भी ये कहा था। तो वो भी पेपर आएगा, उसमें भी पास होना है। और यहां हमारा कोई शत्रु नहीं है, जो भी वो कर रहे हमारे ही कल्याण के लिए, वास्तव में हम देख नहीं पा रहे, बस संकुचित दृष्टि है, ट्यूबुलर विजन। तो बड़ों से पेपर, अगला पेपर बाहर वालों से पेपर, जो ज्ञान में नहीं है। हम एक सेंटर में गए थे, भट्टी चालू थी, बीच में बहन जी आके अनाउंसमेंट कराई, फला फला नंबर की गाड़ी हटाओ। सामने वाला कह रहा है, गाड़ी हटाओ नहीं तो आग लगा दूंगा अभी पेट्रोल डाल के। हमारे गेट के सामने गाड़ी क्यों खड़ी की? कितनी बार समझाया यहां पार्क नहीं करना गाड़ी। बाहर वालों से भी पेपर आएंगे। बाहर वाले अब तक सहयोगी थे, अचानक विरोधी। अब तक हॉल दे रहे थे, अब कहते अब नहीं देंगे हम। कुछ देख लिया, कुछ हो गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, उनके घर का कोई दूर का रिश्तेदार जो ज्ञान में आया डिस्टर्ब हो गया, फांसी लगा दी। एक माता थी जिसकी तीनों बेटियां ब्रह्मा कुमारी बन गई, उसने आग लगाकर खुद को जला दिया। इसलिए बाहर वालों से हमारे संबंध बहुत मीठे, प्रेममयी और स्नेह मिलन बार बार करते रहना, जो कि सब जगह होता ही है। अभी तो बहुत सहयोगी है, पर कहीं कहीं अभी भी विरोधी लोग हैं। उनको सकाश अमृत वेला इमर्ज करके हम गुरुवार का भोग, कुछ ना कुछ उनकी सूक्ष्म रीति से आसपास वालों की, जहां हम रहते आसपास के जो लोग हैं उनकी सेवा होती रहे, सहयोगी बनते जाए। वो ज्ञान में ना चले, योगी ना बने, पर सहयोगी तो बने, विरोध तो ना करे कम से कम। और उनके द्वारा भी ढेर सारे पेपर आ सकते हैं, और जब आएंगे तब बड़ी धैर्यता से उसका सामना करना है, बहुत धैर्य से, घबरा नहीं जाना। एक भाई ने सेंटर के लिए जमीन दे दी और बाद में पता चला वो जमीन उसकी है ही नहीं, किसी और की थी और इधर दे दी। अभी कोर्ट केस चालू है। तो बाहर वालों से पेपर। अगला पेपर मधुबन से पेपर। सबसे बड़ा पेपर कौन सा है? जाते ही एकोमोडेशन। एकोमोडेशन वो भी होगा, एकोमोडेशन, टोली, सिटिंग अरेंजमेंट, सीट, डायमंड हॉल। और एक पेपर है, एक बहन एक माता को लेके जा रही थी। एक माता एक स्टेशन पर 5 मिनट गाड़ी रुकी, वो माता उतरी और चढ़ी नहीं और माता गुम। मधुबन पार्टी पहुंच गई, माता है ही नहीं। और जिसके घर में बहुत विरोध है, बड़ी मुश्किल से उसको लाया था। अब बहन परेशान, माता है ही नहीं, कहां ढूंढे उसको। यहां से पार्टी लेके जाओ, वहां पर किसी को हार्ट अटैक, कोई बुजुर्ग भाई को। अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, उसके रिश्तेदारों से बात करो, उनको बुलाओ, हैंडल करो, डॉक्टर से बात करो, पैसा, बहुत सारी चीजें। ये सारे पेपर मधुबन के हैं और ये भी सब होंगे। इसमें भी थोड़ा बुद्धू नहीं बनना है, थोड़ा स्मार्ट। सामान लेके जा रहे, रातों रात ट्रेन से सारा सामान चोरी, ये भी पेपर है। पुलिस केस, वो सब भी हैंडल करते आना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ओवरऑल स्मार्ट पर्सनैलिटी, बुद्धू नहीं बनना है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कोई पार्टी का, हर पार्टी में कोई ना कोई बीमार तो पड़ता ही है, कोई बुजुर्ग, कोई भाई, कोई माता, या यहां से माताओं को लेके जाते अपनी दवाई या घर पे भेजते, भूल जाते हैं बीपी की, शुगर की। वहां पहुंचते मधुबन 4 दिन के बाद 200 बीपी, 500 शुगर। उसको कहते भर्ती होना, तो दीदी से पूछूंगी, दीदी पहले ही घबरा जाती है, कैसे करूं, क्या करूं। उसको डॉक्टरों से कैसे बात करना वो भी नहीं पता, किससे बात करना वो भी नहीं पता। और कुछ कुछ बहने हम देखते एकदम हैंडल करती है, इतनी स्मूथली, एकदम इमरजेंसी कंडीशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करती है सारी कुछ बातें। डॉक्टर से बात करेगी, पूछेगी कितना दिन रखना है, क्या करना है, रिलेटिव्स को अभी बुलाना है, क्या करना है, कैसे लेके जाना है, फ्लाइट से लेके जाना है, ट्रेन से लेके जाना है, कितना दिन रहेंगे, और कुछ करना है क्या। बहुत इंटेलिजेंट होती है, बहुत इंटेलिजेंट। और कुछ कुछ तो इतना घबरा जाती है, बाप रे पता नहीं अब क्या होगा। तो मधुबन से भी पेपर आएंगे। कितने हुए? 8। 9 हुआ। अगला जो भी है, फाइनेंशियल, आर्थिक, आर्थिक पेपर। हो सकता है कभी कुछ भी ना हो। मधोगरी, उस परिस्थिति से भी गुजरना पड़ेगा। सभी बड़ी बहनों ने और सभी दादियों ने, सब ने ये सब क्रॉस किया है। कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ है, पर एक समय ऐसा भी था कुछ भी नहीं था। दादी जान की सब अनुभव सुनाते, वो जो दाल लेते थे उसमें 1-2 दाने रहते थे दाल के, बाकी सब पानी। दादी मुंबई में थे, आधा बस से जाती थी आधा पैदल, तब देखा है। जगदीश भाई जी अनुभव सुनाते हैं, एक ही वो पैंट वो भी फट गया, सेक्रेटरी कहां से, सिरोही किससे मिलने गए, सुई धागा साथ में लेके जाते थे। आर्थिक अभाव, ये भी पेपर आएगा। इसमें भी अडोल रहना है, इसमें भिखारी नहीं बन जाना है, दे दो, मांगना नहीं है किसी से। जहां प्यूरिटी बहुत ज्यादा है वहां पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चरणों में आके गिरेगी लक्ष्मी। ये भी पेपर आएगा एक दिन। अगला पेपर लीगल, लीगल पेपर, कोर्ट केस, पुलिस केस, ये सारी बातें वो भी हैंडल करते आना चाहिए अगर इस तरह की कोई बातें होती है तो। उसके स्वरूप अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते, उसमें भी बुद्धू नहीं बन जाना है, उसमें भी स्मार्टनेस। तो एक ब्रह्मा कुमारी जीवन में लौकिक से पेपर, शरीर से पेपर, छोटों से पेपर, साथियों से पेपर, बड़ों से पेपर, स्टूडेंट से पेपर, बाहर वालों से पेपर, मधुबन से पेपर, आर्थिक पेपर एंड लीगल, 10 है टोटल। और जिन्होंने ये सारे पेपर क्रॉस कर लिए उनसे थोड़ा सीखना है, अर्थात जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने ये सब देखा है। उदाहरण हमारे सामने है दीदी जी, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी पेपर उन्होंने नहीं देखा होगा, सब कुछ देख लिया है, सब कुछ पार कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं किया, ये आ सकता है, नहीं आया तो बहुत अच्छा, पर आ जाए, अचानक आ जाए तो डरना नहीं है, फिर भयभीत नहीं हो जाना है। पुलिस कैसे आ गई सेंटर में, अब क्या करना है, कोर्ट में जाना है, क्या करना है। एक सेंटर पर ऐसा ही हुआ, एक बहन ने उस सेंटर पे फांसी लगा दी अपने आप को, मर गई। कोर्ट केस हुआ, पुलिस आई, दूसरे सेंटरों को, बहनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, क्या हुआ, क्यों हुआ, सेंटर बंद हो गया। ये सब होगा, पर रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। ओम शांति। ज्यादा हेवी डोज तो नहीं है ना कि ठीक ठीक है, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, हमने शॉर्ट में 1 घंटे में पूरा करना था, इसके लिए पूरा किया, नहीं तो रात भर चल सकता है, इतना बड़ा है, 10 के 10 पेपर। ठीक है, ओम शांति। Any questions? कोई भी questions, किधर से भी। हाँ जी, हाँ। जहाँ जन्म वहाँ जीत, ये दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके उत्तर कहीं पर भी मिलते नहीं है, पर कुछ चिंतन किया जा सकता है। बाबा ने जो अनुजनक, अनुराधा, और इस बार तो कह दिया अनु नारायण भी बोल दिया, तीनों बातें आ गई, बाकी वो दो तो हमेशा आती है, तीसरा नया ऐड हो गया इस बार 4 दिन पहले। बाबा ने कहा राधा जो है वो अनुराधा बनेगी। अनु शब्द के बहुत सारे अर्थ है, अनु अर्थात सूक्ष्म होता है, अनु अर्थात परमाणु होता है, अनु अर्थात दिव्य भी होता है। तो ये जो बातें आती है जनक और अनुजनक, राधा और अनुराधा, हमको लगता है ये बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं संगम युग और सतयुग। अनु शब्द का अर्थ है दिव्यता या महानता या श्रेष्ठता या ग्रेटनेस, ऐसा कोई अर्थ हिंदी डिक्शनरी में अनु का तो एक ही अर्थ लिखा हुआ है, परंतु अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका कहीं कोई उत्तर नहीं है। एक तो ये, और दूसरी जो बात कही, जहां जीत वहां जन, इस पर बहुत सारा चिंतन किया जा सकता है और ये एक हद तक ठीक है।
उसमें ये क्लियर किया हुआ है, मैंने पढ़ा था कि
पर मुरलियों में कैसे आता है? मुरलियों में ऐसे आता है जहां जीत वहां जन्म, वो अलग चीज है, पर मुरली में यही आता है जहां जीत वहां जन्म। यहां जीत अर्थात विकारों पर जीत, जहां जीत होगी वहां जन्म होगा। इसको हम थोड़ा सा अलग अर्थों में ले सकते हैं कि जिसकी विकारों पर जीत होगी उसका सतयुग में जन्म होगा। एक अर्थ ऐसा भी थोड़ा धुंधला सा इस तरह से लिया जा सकता है। हिंदी भाषा है, उसको हिंदी भाषा को आप इस अर्थों से भी ले सकते हैं, जहां जिसकी जीत होगी वहां उसका जन्म होगा। एक अर्थ तो ये है, जहां जीत वहां जन्म। जिस दूसरा अर्थ, जिस समय जिस विकार पर जीत होगी उस समय नया जन्म वहीं होगा। द्विज, द्वितीय जन्म, ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मण अर्थात द्विज, जिसका दूसरा जन्म हुआ है। मतलब यदि किसी में क्रोध है, जिस दिन उसने क्रोध पर विजय पाई वहीं उसका नया एक जन्म चालू हुआ, तो यह भी अर्थ हो सकता है। एक अर्थ हंगम युग का, एक अर्थ यहां से आगे का है, ऐसा अनुमान है। बाकी मुरलियों में इवन वो जो बुक है मुरलियों की कहानियां और कहावतें, उसमें भी इन दोनों चीजों का वर्णन नहीं है, उसमें दूसरी दूसरी चीजें, पर यह नहीं है वहां पर, तो अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा क्या पूछा आपने, और भी कुछ पूछा? अच्छा पूछ ली। शेर अकेला रहता है और हाथी, वो तो बाबा इसके लिए कहते हैं कि तुम शेरनिया हो। आज भी कहा ना गजघोर गजघोर करो, तुम्हें किसी के झुंड में रहने की जरूरत नहीं, तुम अकेले हो, अकेले काफी हो, शेरनी शक्ति हो, अकेले घूमने वाली। वो हाथी झुंड में रहता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, शेर अकेला हाथी झुंड में, ऐसा ही है। तो झुंड में रहना मतलब यहां झुंड का अर्थ संगठन नहीं है, यहां झुंड का अर्थ अर्थात किसी पर निर्भर, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, किसी के ऊपर अवलंबित, वो नहीं है। अकेले कहीं पर भी जाओ, बाबा कहते हैं कि तुम जंगल भरा पड़, बाप बच्चे बाप से कहते हैं बाबा कलराठी जमीन है, सेवा हो नहीं रही है। बाप कहते हैं कोई शिकारी ऐसा कहे कि शिकार नहीं है तो क्या कहेंगे, जंगल तो बहुत है, शिकार नहीं मिल रहा, ऐसा कोई कह सकता है क्या? शिकार करो, शिकार बहुत है। तो उसका भी इस तरह से यही है वो झुंड। और कोई प्रश्न? कोई भी प्रश्न? रॉयल त्याग, रिनंसिएशन अर्थात त्याग, रिनाउंस करना अर्थात छोड़ना, रॉयल रिनंसिएशन, रॉयल त्याग। त्याग अलग अलग प्रकार के हैं। बाबा ने त्याग में तो हमेशा कहा एक है त्याग, एक है महात्याग, एक है सर्वंश त्याग। इसकी एक बीच में त्याग का सप्ताह कोर्स चला था, 7 मुरलियां थी, पहले 4 मुरलियां थी, बीच में गैप था, फिर कुछ दिनों के बाद 2-3 मुरलियां थी, एक साथ नहीं थी, थोड़ा गैप था बीच में, तो 7 मुरलियां थी। त्याग अर्थात त्याग कर दिया, ये खाना है ये नहीं खा रहा हूं, एक। दूसरा है महात्याग, वो उसका जो अहंकार है कि मैंने छोड़ा, उसको भी छोड़ना। और तीसरा तो सबसे आगे है, ये भान ही नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है, सूक्ष्म परिभाषा ये है। रॉयल अर्थात ऐसा शब्द कहीं आया है या आपने तैयार किया? राज ऋषि है, पर रॉयल माया बाबा ने कहा है, रॉयल त्याग हमने आज तक सुना नहीं कभी। हाँ रिट्रीट में होगा, वो किसी ने चिंतन करके निकाला होगा, पर आज तक किसी भी अव्यक्त मुरली में रॉयल त्याग ये शब्द कहीं पर नहीं आया, कहीं पर भी नहीं है जहां तक हमें पता है, होगा अभी कहीं छिपा हुआ, पर हमने तो पढ़ा नहीं आज तक। एक हाँ रिट्रीट में हो सकता है, वो तो बहुत नया नया चिंतन करते हैं उसमें। रॉयल त्याग अर्थात उसको हम उसी के साथ जोड़ सकते हैं कि ऐसा त्याग जिसमें कोई अभिमान नहीं है, त्याग का भी त्याग कि मैंने छोड़ा। जैसे एक साधु है, जो पहले बहुत करोड़पति था उसने करोड़ों का सारी संपत्ति को छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। अभी 40 साल हो गए पर हर प्रवचन में ये बात जरूर कहता है कि मैंने लाखों की संपत्ति को लात मारी। और वो समय जो न्यूज़पेपर पे जो खबर छप के आई थी उसकी कटिंग अभी भी जेब में है। कौन सी? कि इस व्यक्ति ने लाखों संपत्ति को लात मारी और ये सन्यासी बन गया, वो कटिंग अभी भी जेब में है। एक बार एक सभा में प्रवचन कर रहा था, मैंने लाखों की संपत्ति को लात मार गई। एक युवक खड़ा हुआ कहा कि शायद लात ठीक से लगी नहीं, अब तक मारना चालू है। त्याग तो किया पर त्याग में फंस गए। तो नागा सन्यासी होते वस्त्र नहीं पहनते, राख लगाते पर छोटा सा आईना जरूर रखते। अब आईना किस लिए? नंगे घूम रहे हैं परंतु आईना है देखने के लिए। बाल बिल तो ठीक है ना, राख ठीक से लगी कि नहीं लगी, सब जगह लगी कि नहीं लगी, ये कौन सा त्याग है? तो रॉयल रिनंसिएशन अर्थात हम राज ऋषि है, रॉयल योगीज है, तो हमारा त्याग भी बड़ा रॉयल है। सन्यासियों के जैसा नहीं है त्याग, उन जैसा नहीं है, बहुत रॉयल। जो त्याग ना दिखे भाग्य दिखे, मेन तो ये चीज है। बाबा कहते तुम्हारे तुमको देखकर लोगों को नहीं लग रहे बाप रे इतने भयंकर त्यागी, त्याग ना दिखे, क्या दिखे? भाग्य दिखाई दे कि ये कितने भाग्यशाली है। मनोरिंद्र दादी को बाहर के लोग आके कहते थे ये तुम्हारे ज्ञान सरोवर वाले खाते पीते मौज करते, कमाई तो कुछ करते नहीं। दादी कहती थी तुम आके दिखाओ, बैठो इधर, ब्रह्मचर्य है, करके दिखाओ। कहते हो ना खाते पीते और मौज करते, तुम आओ फिर और करो, रहो यहां पर। तो त्याग में भाग्य ज्यादा दिखाई दे, त्याग गुप्त हो जाए, त्याग दिखे ही नहीं, तो वो हो सकता है रॉयल रिनंसिएशन। और कोई लास्ट प्रश्न? लास्ट प्रश्न जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, सबसे पहले तो अगर हमने नहीं पढ़े हैं तो उनके साथ शास्त्रार्थ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सीधा कह दो कि हमें नहीं पता। कुछ समय पहले हमको एक आर्य समाजी मिले थे और हमको पता है इनका लक्ष्य है विवाद करना। उन्होंने हमसे 10 प्रश्न पूछे, हमने कहा हमको पता ही नहीं। उन्होंने कहा ईश्वर को जानते हो क्या? मैंने कहा आप बताएंगे तो पता चलेगा, आप बताओ मुझे क्या है, मुझे तो पता नहीं, आप बताओ। वो उकसाना चाहता था, मुझे पता था उसका लक्ष्य क्या है, उसको सब पता है ब्रह्मा कुमारी फिलोसफी क्या है, माउंट अबू में गुरुकुल है आर्य समाज, वो दिलवाड़ा के सामने है। तो वहां पर वो मिले और ऐसे ऐसे प्रश्न जानबूझ के पूछ रहा है, जानबूझ के पूछ रहा है। हमने एक भी प्रश्न का एक भी उत्तर, हमने कहा ये हमको पता ही नहीं, आप बताएंगे तो बताएंगे, आप थोड़ा ज्ञान तो दो हमको। और वो जो बातें कह रहा था वो दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश किताब है, सारे वेदों की महिमा है। और आर्य समाज ने सबसे ज्यादा विरोध किया है इस यज्ञ का। जहां जहां पर ब्रह्मा कुमारी इसके प्रदर्शनी होती थी बाहर पर्चे लेके खड़े हो जाते ब्रह्मा कुमारी पाखंड और बांटते थे, क्योंकि वेदों के विरुद्ध हम बोल रहे हैं, एंटी वेदाज है ब्रह्मा कुमारी अर्थात। और उनका तो सारा बेस, हाँ वो सब कुछ ना कुछ करते ही है। तो वो इतने प्रश्न हमको पूछ रहा था, हमने तो सीधा कहा कि आप गुरुजी आप बताओ ना हमको, हमने एक भी, और बिल्कुल चुप ही हो गया फिर आखिरी में। अब हमसे कुछ निकाल ही नहीं पाया वो, नहीं तो हम चाहते थे उसके एक एक प्रश्न का खंडन कर सकते थे। पर उसका लक्ष्य हमसे सीखना नहीं था, वो कोई साधक बन के जिज्ञासु बनकर नहीं आया था, वो टेस्ट करने आया था। उसके लिए हमने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, नहीं तो वो जो जो सत्यार्थ प्रकाश की बातें कह रहा था उसी सत्यार्थ प्रकाश को उठाकर हम उसका एक एक वास्तु का खंडन कर सकते थे, पर हमने कुछ नहीं किया। इसके लिए शास्त्रार्थ के लिए बाबा ने मना किया, नो डिबेट्स। हाँ यदि कोई जिज्ञासु है और जिसने पढ़ा हुआ है और सत्य जानना चाहता है तब आप उसको समझा सकते हो, कंपैरिजन करके बता सकते हो कि यहां ये किया क्या मिला, कुछ भी तो नहीं मिला। उसको आप बता सकते हो थोड़ा सा। उसके बाद में भी बहुत सारी बातें तो बाबा ने अभी तक बताई नहीं, बहुत सारी बातें सूक्ष्म है, गुप्त है, आप प्रूव नहीं कर सकते 5000 साल की हुए, वो डिवाइन रेवलेशन है, दैवी प्रकट हुआ है वो फिगर। ये नहीं कह सकते 5200 वर्ष क्यों नहीं है ड्रामा, डायनासोर का क्या हुआ, कार्बन डेटिंग का क्या हुआ, बहुत सारे प्रश्न है। ये जो तुम कल्प वृक्ष दिखाते हो जैन धर्म उसमें है ही नहीं, कहां है बताओ, लोग पूछते जैन धर्म कहां है, पीछे, ये कोई उत्तर थोड़ी है हम बताते ऐसा है, बहुत सारी चीजें है वो उसमें दिखाते हैं। जीसस क्राइस्ट कहता है गॉड इज लाइट, कहां है बाइबल में, वो ओल्ड टेस्टामेंट में है, बाइबल में ही है। वो जो कहते हैं कि 3000 वर्ष पहले क्राइस्ट से स्वर्ग था, ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं, और बाबा ने भी कहा है, बाइबल में ऐसा कभी नहीं कहा, बाबा ने कहा है कहा जाता है, हमेशा बाबा ने क्या कहा है, कहा जाता है। एक बहन ने ऐसे कह दिया कि बाइबल में लिखा है, और वो क्रिश्चियन व्यक्ति डिबेट करने बैठा। यूजुअली जो आता है हमेशा कहा जाता है, आता है कि जीसस क्राइस्ट से इसके 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अगर कहते भी है तो वो ऐसी चीजें हैं, मुरलियों में आता है कभी कभी, कुछ कुछ मिस्टेक भी आती है उसमें। जैसे एक मुरली में आया था कि जो अरविंद महर्षि है उसने अपने गुरु अपने शिष्य को कहा तुम उधर चले जाओ, उसको पढ़ना है, उसको लिखना है, पर एक बार उसकी जगह रामकृष्ण परमहंस का नाम आ गया था। वो मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, वो तो रामकृष्ण पढ़ रहे थे, लिखना तो आता ही नहीं था उनको, वो तो अनपढ़ थे और मुरली में आया था, वो लिखना चाहते थे। तो ऐसी भी चीजें आती है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो एक तो डिबेट, शास्त्रार्थ, डिस्कशन, आर्गुमेंट्स देख कर करना है, व्यक्ति किस वृत्ति से आया है हमारे पास, किस भाव से आया है, परीक्षा लेने आया है, क्या करने आया। गुजरात में एक बार ऐसा ही हुआ, वो एक पत्रकार आ गया भेष बदल कर, और एक बहन संदेशी थी, वतन में जाती थी, और उसको कहा मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ा, बाबा से भोग लगाना है, तो उसने भोग लगाया और संदेश भी लाया, जबकि उसकी पत्नी मरी नहीं थी, वो तो पत्रकार था, न्यूज़पेपर में छाप दिया पाखंड तो कम कर दिया फिर दादियों ने वो सब पार्ट संदेशियों का। ऐसा होता है, सामने वाला किस भाव से आ रहा है, अगर उसमें सही में भगवान को पाने की लगन है तो हमारी बातों को अच्छे से हम उसको समझा सकते हैं। परंतु वो आ रहा ही इसलिए कि आपको हरा दे, डिबेट करने ही आ रहा है, जैसे वो हमने हमारे साथ हुआ, उसका लक्ष्य ही था हमको हराना, तो हमने तो अपनी हार पहले ही मान ली, क्यों हम वाद विवाद कर रहे हैं उससे, बिल्कुल नहीं, शास्त्रार्थ नहीं करना है। कोई डायरेक्ट ऐसा कहेगा भी नहीं कि शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली करेंगे। पर हमने एक भाई का, वो कहता हम मुझे आप कोर्स कराओ, हमने कभी हम कभी किसी का कोर्स वीर्स नहीं कराते पर वो एक CRPF का ऑफिसर था, वो पीछे पड़ गया, उसने सब शास्त्र पढ़े थे, सब 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 कुछ पढ़ा था, पर वो जिज्ञासु था, इसके लिए हमने उसको टाइम दिया था, पर उसने जो जो आर्गुमेंट किए हर एक बात उसकी उसको खंडन करके बताई कि ऐसा है, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, बहुत सारी चीजें है उधर भक्ति मार्ग की। और हम डायरेक्टली बहुत सारी बातें नहीं कह सकते क्योंकि बाबा ने बहुत सारी बातें अभी भी गुप्त रखी है। एक बहुत अच्छी लाइन है, इस ड्रामा के कुछ राज राज ही रहेंगे, यही इस ड्रामा की शोभा है, इस ड्रामा के कुछ राज राज ही रहेंगे और यही इस ड्रामा की शोभा है। सब थोड़ी ना बता देगा, वो कुछ तो बातें रखेगा अपने पास, सारा थोड़ी ना खोल देगा, कुछ तो रखेगा, बहुत मेन मेन पावरफुल पॉइंट्स जिससे ये ड्रामा चल रहा है, ये सृष्टि रहस्यमयी है। ओम शांति।
ओम शांति। आज आप सबको कितनी कितनी क्लासेस मिल गई, कितने टॉपिक मिल गए। हर आत्मा संतुष्ट हुई, प्रसन्न हुई, या हम तो जानते ही थे। हाँ
नहीं, जानते तो अच्छा है, रिवीजन।
वास्तव में सचमुच जो बाबा कहता है न्यारे और प्यारे, इसका मतलब ये है, हम एक दूसरे का कदर करें, रिस्पेक्ट दें। जब रिस्पेक्ट देते हैं तो अपने आप ही, जो भाई जी बार बार कह रहे थे डिस्टेंस, कई बार कई बहनें समझती नहीं हैं डिस्टेंस। जब अपन किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो कैसे बोलते हैं, चाहे आप बड़े हैं चाहे आपसे कोई बड़े हैं, रहता है ना डिस्टेंस। ये चीज बहुत सीखने की है, इसके बिना ब्रह्मा कुमारी जीवन सफल नहीं है। हमारी 99% समस्याओं का कारण ये है, हम इतना घुल जाते हैं, इतना घुल जाते हैं। मैंने देखा कई बार कई बहनें, जनरल बात करती हूँ, भाई बहनों से बात करेंगी ना 10 बार, वो चाहे बहन ही है, मान लो मैं टीचर हूं, माता कोई खड़ी, 10 बार उसको बात करते करते यूं हाथ लगाएगी। क्या विचार है आप लोगों का, लगाना चाहिए? हम पूजनीय देवियां, हमारे साथ कोई क्यों टच करे? लेकिन हम क्या सोचते हैं, उनको अपनी फ्रेंड्स की तरह। हमारी मनोहर दादी सुनाया करती थी, जब पहले दिन कोई आता है ना कोर्स करने, वो कहता है ये तो देवियां हैं। फिर जब कोर्स करना शुरू करता है कहता है ये टीचर हैं। और फिर जब क्लास में आना शुरू करता है तो क्या कहता है, कहता है ये तो हमारी जैसी बहनें हैं। तो देखो कहां देवी कहां हमारी जैसी बहन, हो गया ना गड़बड़ झाला। तो ये नहीं करना। अगर हमारे मन में बस एक ही शब्द पक्का कर लो, जो बाबा भी कहता है, स्वमान में रहो सम्मान पाओ, सम्मान रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट दो। हमें कोई दे ना दे, पर यह हो नहीं सकता कि ना दे, क्योंकि हमने बीज कौन सा बोया, रिस्पेक्ट का। रिस्पेक्ट दे, सबको रिस्पेक्ट दे, छोटे को भी बड़े को भी, बस यही सफलता का राज है। तो हम तह दिल से अपने क्या कहें, साधु माना साधना करने वाला, साधु माना गेरू कपड़े वाला नहीं, वास्तव में साधना वाले को ही साधु कहा जाता है। तो बाबा के ऐसे महान श्रद्धे राज ऋषि, परम तप महायोगी श्रद्धे भ्राता सचिन जी को का पुनः अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत। और उसके साथ साथ साधुओं के लिए कहते हैं साधुवाद, धन्यवाद नहीं, एक यही वाद है जहां कोई भी वाद नहीं, साधुवाद। और आपने 2 दिन में सचमुच भाई बहनों को, टीचर्स बहनों को इतना 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 भरपूर किया है। जिनकी रुचि होगी, कल एक शाम को मैं लेट थी प्रोग्राम में, मैं कहीं और गई थी, एक शब्द था कि क्या चाहिए हमारे तप में, पुरुषार्थ का खून चाहिए, लहू चाहिए, ये जज्बात हमारे में चाहिए। हम जो ये सोचते हैं ना, बस ब्रह्मा कुमारी बस आराम का, नहीं, हमारा पुरुषार्थ की और लगन, जिसकी लगन है वह दूसरों की लगन जगा सकता है। प्रैक्टिकल उदाहरण है आप, आपकी पुरुषार्थ के लिए लगन मेहनत आप देख लीजिए, कितना कम समय हुआ है। 2010 में मधुबन में रहना शुरू किया, भले ज्ञान पहले मिल भी गया, रहना तो तभी शुरू किया, अभी 18 चल रहा है, कितने साल हुए,
15
है?
15
नहीं, यज्ञ में रहते 8। आप में से कौन कौन बहने हैं जिनको 8 साल यज्ञ में रहते हुए, हाथ उठाना, 8 साल वाली। अच्छा, जो 8 साल से ऊपर वाली हैं वो हाथ उठाओ। तो देख लो किसका पुरुषार्थ ज्यादा है, अपन देख सकते हैं ना। कई बार हमारे मन में आता है, कहते मुरली सुनाना क्या बड़ी बात है, हम भी क्लास तो करा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उसको अपने अंदर जो बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये आप उसके एक सैंपल हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। ज्ञान की बातों को रूहानियत से रंगना। आज का टॉपिक क्या था? अब अगर ये कोई टॉपिक आप किसी को बताओ ना कि टीचर्स बहनों की क्लास में सचिन भाई ने क्या कहा दुल्हन, वो कहेंगे ये दुल्हने कहां से आ गई और पिया कहां से आ गया। लेकिन इन सब बातों को इतने ऊपर लेवल पे ले जाना और ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करना, आप इससे अंदाज लगाइए कि भाई जी का चिंतन कहां तक है। हमारे आगे कोई ऐसा शब्द ही बोल दे ना दुल्हन और दूल्हा, तो हम शर्माने लग जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान तो अच्छी तरह ठूस ठूस के भरा हुआ है हमारे में, अभी तक गया नहीं। कैसे हम हर स्थिति, ये भी एक स्थिति है, अगर हमें कोई कहे इस टॉपिक पे, हम कहेंगे लो ये कोई ज्ञान का टॉपिक है। लेकिन ये भी हर स्थिति परिस्थिति को फेस करना है। क्या सचमुच मेरा चिंतन इतना ऊंचा है? तो आज से, अभी से, ड्रामा अनुसार आज 2 तारीख है, दिसंबर मास है, और यूं तो हमने लास्ट संडे या उससे पिछले संडे को एक अपना होमवर्क चालू किया हुआ है, कईयों ने किया होगा, जो एक 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 में से क्वेश्चन निकाले थे, लिखना था। तो सचमुच हम लोग अपने अंदर ये प्रतिज्ञा करें, क्या भी हो जाए हमें अपना चिंतन श्रेष्ठ। हम तो कई बार कहते हैं जगदीश भाई जी की सारी किताबें कितने लोगों ने पढ़ी हैं, कितनों ने पढ़ी है, हाथ उठा। वो ज्ञान सुधा 1, 2, 3, 4 चारों, और बस, और ये जो छोटी छोटी किताबें हैं, संस्कार परिवर्तन, सचिमन की शांति, सचिमन की शांति जगदीश भाई ने लिखी है, जाके देखना। हीरे तुल्य जीवन किसका लिखा हुआ है, जाके देखना। हाँ जयंती का एक, दोनों में से एक किताब आनंद के नाम से है, हीरे तुल्य या सचिमन की शांति, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और आप कहेंगे ये आनंद भाई कौन थे, ब्रिजमोहन जी के लौकिक पिताजी। तो आप हर किताब, हर, अगर सचमुच हम ये छोटी छोटी किताबें, हम सोचते हैं सेल करने के लिए हैं, जब मैंने खुद कोई सेल नहीं की है, मैंने ही नहीं पढ़ी, तो दूसरे क्या पढ़ेंगे। आप इनको पढ़ के देखिए और इनमें अपने पुरुषार्थ की लास्ट में किस बात को धारण करना है, किस में क्या चार्ट रखना है। कितनी जबरदस्त किताब है संस्कार परिवर्तन, योगयुक्त भोजन, और आप देख लो तारीख सहित सचिन भाई बताते हैं इन्वर्टेड कॉमास अव्यक्त बाप दादा। हालांकि मैंने सारी मुरलियां पढ़ी हुई हैं, पर मेरे को तारीख किसी की नहीं याद। ये कहते हैं वह बाबा ने ये कहा, पर सचिन भाई तो एडवांस तारीख सहित। तो ये सचमुच अपना अपना पुरुषार्थ है। ये बाबा ने हमारे आगे एक बहुत बड़ा डेमो दिया है। हम ये नहीं कह सकते हम नए हैं या पुराने हैं। अभी 3-4 दिन पहले था बच्चे बाबा की याद और ईश्वरीय पढ़ाई। बाबा के आगे जाएंगे तो बाबा यही पूछेगा, बच्चे तुमने पढ़ाई कहां तक की, धारणा कहां तक की। इसलिए पुनः भ्राता जी का तहे दिल से बहुत 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 आभार, साधुवाद, जिन्होंने हमारे अंदर फिर से पुरुषार्थ की ज्वाला तीव्र करने के लिए इतना ज्ञान घृत डाला है। ये भी वंडर है, अमृत वेले योग कमेंट्री से, बाद में क्लास, मुरली बाद क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास, गिन लो कितनी हो गई। अगर हमें कहीं एक दिन में ऐसे 5 क्लासेस करानी पड़े, हम कहेंगे सवेरे करा दी ना, बार बार क्या कराएंगे, ना तो टॉपिक है ना मटेरियल है। तो कितना मनन चिंतन चाहिए। जैसे जगदीश भाई जी जब शुरू शुरू में फॉरेन में गए थे ना, तो आके अनुभव सुनाया था कि जानकी दादी ने ड्यूटी लगा दी है, एक भाई को कार में ले जाएगा ये सेवा में जगह जगह। अब वो भाई तो हर भाषण सुन रहा है जगदीश भाई जी का, तो जगदीश जी को लगा कि ये तो कहेगा भाई जी तो वही बात सुनाते हैं। तो जगदीश भाई बहुत हंस हंस के सुनाया करते थे कि फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ क्या नया सुनाऊं, जो इसको लगे कि यहाँ जगदीश भाई ने ये नई बात सुनाई है। और वो आके बताता था दादी को, दादी यहाँ जगदीश भाई ने ये नई बात सुनाई, ये नई बात सुनाई। तो अपने अंदर ये उमंग ज्ञान के प्रति, याद के प्रति ला सकते हैं, ला सकते हैं या नहीं? हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। मिलता है क्या? सचिन भाई के पास टाइम है, क्योंकि इनको तो क्या करना है, केवल पेशेंट ही तो देखना है ना? ऐसे आपको पता है डॉक्टर की लाइफ सबसे बिजी लाइफ है, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और फिर भी इतना मनन चिंतन करते हैं, अपने को उमंग में रखते हैं और दूसरों को केवल उमंग में नहीं रखते हैं, लेकिन आप आगे कैसे बढ़ें, अपने को सिक्योर कैसे फील करें। कई बार तो कई बहनें यही कह देती हैं, हमारे यहाँ क्या सिक्योरिटी है, क्या सिक्योरिटी है? रोज सवेरे सर्वशक्तिवान रक्षक बाबा का आवाहन करो, बाबा आप हमारे रक्षक हैं। तो ये तो बातें सचमुच ऐसी हैं जो हम आपस में बैठ के शेयरिंग करें, लेन देन करें, तो इनसे हमारी आत्मा में बहुत शक्ति आती है। तो हम चाहेंगे कि सचिन भाई, सब भाई बहनों के लिए आप समय दें या ना दें, आप चाहे हमें वर्किंग डेज पे टाइम दें, लेकिन बहनों के लिए, हाँ ठीक है ना बहने, बहनों के लिए महीना दो महीने में एक बार एक दिन तो आओ, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है, हमारी रिक्वेस्ट है। और फिर हम बहनें भी तो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, खाली ताली बजाएंगे? कितनी किताबें कही आज पढ़ने को, कौन कौन सी थी हैं? अनुभूतियां और वाहरे में ब्राह्मण आत्मा। तो समझा कितना पढ़ना है। और जब हम सब पढ़ लेंगे तो हम एक मैसेज भेजेंगे सचिन भाई को कि हमारी सब बहनों ने पढ़ लिया है, सचिन भाई आओ पेपर लेने, और हम सचिन भाई का पेपर लेंगे, देखेंगे सचिन भाई ने ठीक से पढ़ा है नहीं पढ़ा है। हा? अपना प्रश्न पूछना, अनुभव सुनाना, यही तो एक विधि है, यही हमारा रूहानी स्नेह एक दूसरे के लिए है। इसलिए तहे दिल से राज ऋषि राजयोगी बाबा के इस नूरे रतन का, सचिन भाई का बहुत 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 दिल से शुक्रिया, थैंक्स।